हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 2 श्लोक नंबर 7। का त्वं चिकीर्षसि च किं मुनिवर्य शैले माया असि कापि भगवत परदेवताया विज्ये बिभर्षि धनुषि श्रुहोत् आत्मनः अर्थे किंबा मृगान् मृगयसे विपिने प्रमता। का त्वं चिकीर्षसि च किं मुनिवर्य शैले माया शिकापि भगवत परदेवताया विज्ये बिभर्षि धनुषि श्रोदात्मनोऽर्थे किंबा मृगान् मृगयसे विपिने प्रमतान्। का त्वं चिकीर्षसि च किं मुनिवर्य शैले माया शिकापि भगवत् परदेवताया विज्ये बिभर्षि धनुषि श्रुदात्मनोऽर्थे किंबा मृगान् मृगयसे विपिने प्रमता। का त्वं चिकीर्षसि च किं मुनिवर्य शैले माया शिकापि भगवत् परदेवताया विज्ये बिभर्षि धनुषि श्रुदात्मनोऽर्थे किंबा मृगान् मृगयसे विपिने प्रमता।
Thank you.
शब्दानुवाद का कौन तुम हो चिकीर्षसि क्या करना चाहते हो च भी किम क्या मुनिवर्य हे मुनिश्रेष्ठ शैले इस पर्वत पर माया असी हो कापी कुछ भगवत भगवान पर देवताया दिव्य ईश्वर का विजय बिना डोरी के विभर्षी धारण किए हुए धनुषी दो धनुष श्रुहुत मित्र का आत्मनः अपने अर्थे हेतु किंबा अथवा मृगान जंगली पशु मृगयसे आखेड करने का प्रयत्न कर रहे हो विपिने इस वन में प्रमतान धन से मत वालों का अनुवाद और तात्पर्य अभय चरण भक्ति विदान स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की राजकुमार ने भूल से अप्सरा को संबोधित किया हे मुनिवर्य तुम कौन हो इस पर्वत पर क्यों आए हो और क्या करना चाहते हो क्या तुम भगवान की कोई माया हो तुम बिना डोरी वाले इन दो धनुष को क्यों धारण किए हो क्या इनसे कोई तुम्हारा प्रयोजन है या अपने मित्र के लिए इन्हें धारण किए हुए हो संभवतः तुम इन्हें इस वन के मतवाले पागल पशुओं को मारने के लिए धारण किए हो तात्पर्य वन में कठिन तपस्या करते हुए अग्निन्द्र ब्रह्मा द्वारा भेजी गई पूर्वाचित की भंगिमाओं से मोहित हो गए जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है कामे स्थे स्थिर हृत ज्ञाना कामी पुरुष अपने बुद्धि गंवा बैठता है अतः बुद्धि खोने के पश्चात अग्निन्द्र स्त्री तथा पुरुष में अंतर नहीं कर पाए उन्होंने उसे मुनिपुत्र समझा इसलिए उसे मुनिवर्य कहकर संबोधित किया किंतु उसकी सुंदरता के कारण उन्हें विश्वास नहीं हो पाया कि ये किशोर है अतः उन्होंने उसके अंग के ध्यान से देखना प्रारंभ किया सर्वप्रथम उन्हें उसके दो भौंयें दिखाई पड़ी जिनको देखकर उन्हें भ्रम हुआ कि कहीं वो भगवान की माया तो नहीं है इसके लिए भगवत पर देवताया शब्द का प्रयोग हुआ है देवता अर्थात देवतागण इस भौतिक जगत से संबंधित है किंतु भगवान इस भौतिक लोक से परे रहते हैं अतः परदेवता कहलाते हैं यह भौतिक जगत माया के द्वारा सृजित है किंतु परदेवता भगवान के आदेश के अनुसार इसका सृजन होता है जैसा कि भगवद्गीता में पुष्टि की गई है माया अध्यक्षण प्रकृति श्वेते सचराचरम इस संसार की पुष्टिका परम नियंता माया नहीं है माया श्री कृष्ण की ओर से कर्म करती है पूर्वचित की भौंयें इतनी सुंदर थी कि अग्निन्द्र ने उनकी तुलना डोरी विहीन धनुष से की इसलिए उन्होंने पूछा कि वे उसके अपने प्रयोजन के लिए अथवा किसी अन्य के लिए थे उसके भौंयें वन के पशुओं को मारने के लिए प्रयुक्त धनुष जैसी थी यह संसार वन के तुल्य है इसके निवासी वन के पशुओं तथा हिरण तथा बाघ जैसे हैं जिनका शिकार किया जाता है सुंदर स्त्री की भौंयें ही उनके मारने वाली है स्त्री की सुंदरता से मोहित होकर संसार के सभी मनुष्य बिना डोरी वाले धनुष से मार दिए जाते हैं, किंतु कोई यह नहीं देख पाता माया उन्हें किस प्रकार मारती है। पर यथार्थ में वे मारे जाते हैं भृत्वा भृत्वा प्रलियते। अपने तपस्या से अग्निन्द्र जान सके भगवान के आदेश से माया किस प्रकार कार्य करती है। प्रमतान शब्द भी महत्वपूर्ण है। प्रमत का अर्थ है ऐसा व्यक्ति को जो अपने इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता। समस्त संसार ऐसे ही प्रमत या विमूढ़ व्यक्तियों द्वारा शोषित हो रहा है। अतः प्रहलाद महाराज ने कहा है भागवत सप्तम स्कंद अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 43 में, सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्योहत विमुड़ान। वे क्षणिक सुख के लिए विषय से सड़ते रहते हैं और इंद्रिय भोग के लिए ही दिन रात श्रम करते हुए जीवन नष्ट कर देते हैं। उन्हें ईश्वर से किसी प्रकार का लगाव नहीं रहता है। मैं उन्हीं के लिए सोचमग्न हूँ और उन्हें माया के चंगुल से मुक्त करने के विभिन्न युक्तियाँ सोच रहा हूँ। शास्त्र में इंद्रिय तुष्टि के लिए कर्म करने वाले कर्मियों को प्रमत, विमुख तथा विमूढ़ कहा गया है, माया के द्वारा मारे जाते हैं। किंतु जो अप्रमत अर्थात धीर है, वे भलीभांति जानते रहते हैं कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य परम पुरुष की सेवा करना है। जो माया के अदृश्य धनुष तथा बाण से प्रमत है, उन्हें वह मारने के लिए सदा तत्पर रहती है। अग्निन्द्र ने पूर्वचित से इस सबसे बारे में पूछा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरतम सगण रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतं सवदूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदनसगण ललिता श्रीविशाखानितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री कृष्ण बलराम का मंदिर का ओर से आप लोग इसे जो महाराज अग्निन्द्र का चरित्र लगभग 5-6 दिन हुआ, ये 7 नंबर श्लोक चालू है आज सुन रहे हो, तब ज़्यादा से ज़्यादा संपूर्ण ये अध्याय स्त्री लोक का ऊपर आएगा। लेकिन कभी मन में नहीं लेना, कभी भक्त लोग कुछ बोल देते हैं, ये शास्त्र का तो प्रमाण दिया जाता है, लेकिन कभी कभी माताओं लोग को घुसा कर लेते हैं क्यों आप इतना बताया कभी कभी बाद में बता देते हैं, लेकिन कभी नाराज नहीं होना है। शास्त्र में एक ही बात नहीं होता है, भागवत में बहुत सारा वर्णन आता है। सिर्फ यही चैप्टर में श्री माता जी का बारे में नहीं बताया गया, सभी स्कंद में माताओं लोग का कितने स्कंद का बारे में है। किस प्रकार हमें कि तपस्या करने वाले व्यक्ति को भक्ति से विमुख नहीं कराना चाहिए। ये सभी भक्त लोग के लिए कर्तव्य है। और यहाँ पर जो अग्निद्रह के सामने पूर्वचित जब जाती है तब उसका चाली चलन, उसका आवाज और रंग बेरंग को देखते हुए अग्निद्रा फंस जाते हैं। तब अलग अलग शास्त्र में नहीं श्रीमद् भागवत में देखा जाए तो बहुत प्रमाण है। देखेंगे तृतीय स्कंद में आलोचना होता है जब माता देवहूति का उपदेश दिया जा रहा था, ये तृतीय स्कंद की बात है। चतुर्थ स्कंद में भी वर्णन है देवर्षि नारद राजा प्राचीन बरही का उपदेश देने का टाइम पे। फिर पंचम स्कंद आता है पहला, जो चैप्टर प्रियव्रत का बारे में आता है, वो उपाख्यान में देखा जाए। फिर षष्ठ स्कंद में जमराज अपना दूत को आदेश देते हैं, जो गृहस्थ जीवन और जड़ सुख प्रति आसक्त व्यक्ति को जमराज आदेश देते हैं, जमदूत को मेरा पास लाने के लिए, जो गृहस्थ जीवन में आसक्त है और जुड़ा सुख प्रति आसक्त है, सांसारिक सुख का प्रति आसक्त है, उन लोग को लाने के लिए जमराज आदेश देते हैं। सप्तम अध्याय में, सप्तम स्कंद में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को भी उपदेश देते हैं। नवम स्कंद में सौवरी मुनि का चरित्र में देखिए, सौवरी मुनि कितना साल तक तपस्या किया, फिर जमुना का किनार पे, हम लोग भी यही जमुना का किनारे में बैठ के भजन कर रहे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सौवरी मुनि जमुना का किनारे में तपस्या किया, लेकिन फिर सोचा पानी के अंदर जाके तपस्या करो, फिर जल के अंदर जाके तपस्या किया। इतने साल बीत गया फिर भी मछली का शंख देखने के मात्र से उनका मन मोहित हो गया। फिर मांधाता का बेटी को शादी करती है, कितना बेटी है, 50, एक ही नहीं, हम तो एक ही पत्नी के लिए फंस जाते हैं, एक ही माताजी के लिए फंस जाते हैं, लेकिन 50 पत्नी शादी करते हैं, 50 पत्नी से एक ही पत्नी से कितने कितने बच्चा है, लगभग उनका काउंटिंग कर नहीं सकते हैं, कितने बच्चे हुए, कितना बड़ा गांव होगा। तब तो सौवरी मुनि का चरित्र आता है, तब फिर नवम स्कंद भागवत में आता है। तो फिर जजाति और देवजानी का बारे में, वो भी नवम स्कंद में है सभी जगह पे। और एकादश स्कंद में आता है पुरुरवा और उर्वशी, उसमें आप देखेंगे। तब एक ही जगह पे कि एक ही चैप्टर में नहीं है जो कि माताजी लोग का बारे में बताते हैं। फिर चतुर्थ स्कंद भागवत में देवर्षि नारद जब राजा उतनपाद को जिज्ञासा करते हैं, महाराज आपका मुख क्यों सूखा पड़ा है, आप अत्यंत शुष्क दिखाई दे रहे हैं, क्यों, क्या कारण है, क्योंकि उतानपाद किसका प्रति आसक्ति थे, किसका प्रति, जो कि दूसरा पत्नी का प्रति, दूसरा पत्नी कौन था, सुरुचि। सुनीति का प्रति इतना आसक्त नहीं जितना आसक्ति सुरुचि का प्रति, इसलिए उनका मुख सूखा पड़ गया था ये आसक्ति का कारण से। इस प्रकार संपूर्ण भागवत में देखा जाए बहुत सारा जगह पर ये स्त्री का बारे में, नारी का बारे में वर्णन है। लेकिन पहला जो आप काल सुने हैं, काल तो नहीं था, परसों प्रभु जी ने बता रहे थे, जब छठा नंबर श्लोक था, वो श्लोक में पूर्वचित जो अप्सरा उसका सौंदर्य का बारे में वर्णन है, अपना सौंदर्य का बारे में, वो श्लोक में छठा नंबर श्लोक में। और राजकुमार उसको देखते हुए कैसा वशीभूत होता है उनका चेहरा को देखते हुए। और आज का जो श्लोक है, अग्निंद्र ने पूर्वचित से पूछता है तुम कौन हो, क्यों आए हो, और ये पर्वत का ऊपर आपका क्या काम है और क्या करना चाहते हो, आज का श्लोक में यह आता है। तब यही श्लोक में यह वर्णन है, वन में कठिन परिश्रम करने वाले अग्निंद्र का सामने ब्रह्मा जी स्वयं भेजती है पूर्वजित को, कहते हैं कोई कितना बड़ा तपस्वी क्यों नहीं हो, लेकिन एक स्त्री अपना चालीचलन और रंग बरंग इत्यादि से एक तपस्वी को मोहित करा देती है। विश्वामित्र को देखिए मोहित हुए। दूसरा, जब समुद्र मंथन हुआ था तब भगवान स्वयं मोहिनी रूप लिए, भगवान स्वयं मोहिनी रूप लिए, और जो अमृत का पात्र वो असुर का हाथ में चला गया था, तब असुर लोग लेकर भाग रहे थे, लेकिन भगवान यहाँ पे लीलाधारी है लीला करने के लिए, तब जब भगवान स्वयं मोहिन मतलब नारी का स्वरूप लिए, नारी का स्वरूप जब लिए असुर लोग इमिडिएटली नारी का स्वरूप को देखते हुए मोहित हो गए, नारी का स्वरूप को देखते हुए मोहित होने का नाते, और भगवान जब मांगे वो अमृत का पात्र मेरा हाथ में दे दो, तब असुर लोग विमोहित हो गए थे, मोहित होने का नाते वो अमृत का पात्र किसका हाथ में दिए, भगवान का हाथ में दे दिए। ये भी भागवत में वर्णन है किस प्रकार एक नारी एक पुरुष को जाल में फंसाता है, किस प्रकार मोहित कराता है, और ज्यादा से ज्यादा मोहित होने के लिए सिर्फ आंख से, यह सबसे बड़ा खतरनाक है। इसलिए यहां पे देते हैं भोए, भोए मतलब क्या कहते हैं हिंदी में, भोए कह रहा है इधर संस्कृत में, ये दोनों आंख का जो ऊपर का क्या बोलते हैं इसको आप लोग, वह ना ये जो जगह है यहां पे, ये जगह पे क्या करते हैं ज्यादा से लोग को अभी आईब्रो लगाते हैं, बुरा नहीं मानना, आईब्रो उनको इतना डिजाइन बनाते हैं एक जेंट्स किसी प्रकार, और जब बाई चांस प्रभुपाद कहते थे कभी कभी आप लोग ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी का टाइम पे कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाते हो, तब कभी भी घर का अंदर कोई पुरुष नहीं है, सामने में माताजी आ रहे तब उनका आँख को आँख मिलाकर कभी बात नहीं करना है, ब्रह्मचारी को ये प्रभुपाद के लिए उपदेश है। और कहते थे फिर कोई ब्रह्मचारी पूछा फिर प्रभुपाद को तब कहाँ कैसा बात करूँ, तो बोले उनका पैर को देखते हुए बात करना है, उनका फेस टू फेस नहीं मिलाना है। इसलिए तो यहाँ पे जितने बंदर है ना कभी भी आपको फेस नहीं मिलाना, आपको चेहरा को चेहरा मिला देना, बंदर आता है इसलिए कटने के लिए, कभी भी चेहरा मत मिलाओ इधर जितने से वो बंदर है, बंदर को आँख का ऊपर आपका आँख और उनका आँख साथ संलग्न हो गया इमिडिएटली वो कैच करेगा आपको दंशन करेगा, इसी प्रकार माया। तब दूसरा किस प्रकार मोहित होते हैं, ब्रह्मा जी स्वयं अपना पुत्री से मोहित हुए थे, फिर भगवान का मोहिनी रूप को देख के स्वयं शिव जी भी मोहित हुए थे। मोहिनी विद्या ज्यादा से ज्यादा सीखना है तो कहां से सीखना है, माता जी से, मोहित उनका पास ये विद्या ऑलरेडी भगवान ने वर दिया है उनको, ऑलरेडी उनका ऊपर उनको वर दिए है। माया भगवान का निर्देश से काम करती है, गीता में भगवान कहते हैं माया अधिकरण प्रकृति सोयते सचराचरम, इस संसार के सृष्टि का परम नियंता माया नहीं है, माया श्री कृष्ण की ओर से कर्म करती है। पूर्वजित की भोये इतनी सुंदर थी, अग्निंद्र ने उसको तुलना डोरी विहीन धनुष से करते हैं। प्रभुपाद मेंशन करते हैं ना, कोई जंगल में जाएगा, जंगल में जाने का टाइम पे उसका हाथ में धनुष होता है, और धनुष कैसा होता है उसमें एक ही ऐसा, आप लोगों को तो देखा होगा धनुष ना, भगवान राम का हाथ में हमेशा धनुष रहता है, तो वह एक ही रस्सी रहता है दोनों का, हाँ दोनों क्या बोलते हैं आप लोग को, इसका अग्रभाग को टेढ़ा करके बांध दिया जाता है, तब वहां से तीर को लगाते हैं। तब यहां पे कह रहे हैं प्रभुपाद, यहां पे मेंशन करते हैं डोरी विहीन धनुष, मतलब उसमें रस्सी नहीं है, बिना रस्सी वाला धनुष क्या है, माताजी का आंख जो है बिना डोरी वाला धनुष, वो किस प्रकार व्यक्ति को कैच करता है,
वहां पे जंगल पे जाने से धनुष चाहिए और धनुष से जीव को हत्या कर सकते हैं, जीव को मार सकते हैं, लेकिन बिना धनुष, बिना डोरी वाला धनुष से यहां पे व्यक्ति को मार दिया जा रहा है। वन में कोई भी पशु को मारने के लिए धनुष चाहिए, लेकिन सुंदर स्त्री की भौंई ही अग्निंद्र को मारने वाली थी। पता नहीं चलता है माया किस प्रकार काम करती है। स्त्री लोग का आंख कितना खतरा होता है एक तपस्वी के लिए। एक किताब है, आप लोग को जानते हैं, पढ़ा भी होगा, ब्रह्मचारी कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो किताब है, हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज का किताब है। इसमें इतने पॉइंट दिया जाता है अपना लाइफ को कैसा रखने के लिए, कैसा प्रभु का भक्ति करने के लिए, कहाँ पे कितना तक बात करना है, कहाँ पे कितना तक बात नहीं करना है, कितने तक मिलना, कितना समय तक मिलना और कितना बजे मिलना, सब कुछ ऑलरेडी इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया जाता है ब्रह्मचारी के लिए। और सबसे खतरनाक होता है आँख, और आँख से क्या क्या होता है ध्यान से सुनोगे तो मालूम पड़ेगा। आँख की प्रवृत्ति है कि वो स्त्रियों की और चली जाती है, ज्यादा से ज्यादा आँख। कितने ध्यान मग्न में आप बैठ के भगवान का नाम कर रहे हैं। यहां पे देखिए, स्वयं राधा रानी थोड़ा तिरछी नजर से कृष्ण का ऊपर नजर डालने मात्र से कृष्ण का हाथ से बांसुरी भी छूट गया। और अभी का टाइम पे क्या है, अभी हम लोग इस संस्था में है, लेकिन अभी का टाइम पे हमारा ऊपर कोई नजर डालता है ब्रह्मचारी का ऊपर, बाई चांस थोड़ा सा नजर डाला और थोड़ी से मुस्कुरा दिया, तब हमारा हाथ से माला भी छूट जाती है। अभी का स्थिति संपूर्ण खतरा है, इसलिए स्थिति को बजाय प्रभु का शरण पे ही, प्रभु को ही प्रार्थना करना, ज्यादा से ज्यादा पावरफुल नित्यानंद प्रभु, ज्यादा से ब्रह्मचारी के लिए ज्यादा से महत्वपूर्ण है नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करना है, हाथ जोड़ के हर दिन रोना है, भगवान तब बचा सकते हैं। और ये भी नहीं समझना चाहिए सिर्फ स्त्री ही माया है, ऐसा भी नहीं समझना चाहिए। कोई सोचता है स्त्री ही माया, जब ज्यादा वासना का प्रवृत्ति होता है इसको माया कहा जाता है, वासना का ज्यादा प्रवृत्ति होने का नाते प्रमाण है शास्त्र में, ये भी शास्त्र में प्रमाण है। जब गृहस्थ धर्म का हमें पालन करते हैं, गृहस्थ धर्म में पालन किया गया है, पति पत्नी का साथ मिलने के लिए महीना में एक बार मिलन है, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, दस बार नहीं, एक बार मिलन है, और उसका तिथि पर। ये संपूर्ण शास्त्र में, क्योंकि ब्रह्मचारी का ये कर्तव्य नहीं है बोलने के लिए, यहां पे तो गृहस्थ भक्त को देना चाहिए प्रवचन, लेकिन ये शास्त्र में वर्णन है और ये मंदिर का तरफ से एक सेवा दिया जाता है तब इसलिए बोल रहा हूं, नहीं कोई अधिकार नहीं है बोलने के लिए। और कुछ भी भक्त लोग पूछते हैं, बिना एक्सपीरियंस से आप कैसा बोलते हैं, हर चीज एक्सपीरियंस से नहीं बोला जाता है, हर चीज एक्सपीरियंस से नहीं होता है, शास्त्र का तो प्रमाण दिया जाता है। एक्सपीरियंस होने से बोलेगा वो भी नहीं है, तब आंख कितना खतरा है। किंतु इस आदत को छोड़ देना चाहिए, जब एक पुरुष एक स्त्री को देखता है तब निकट स्थित कामदेव अपने पुष्प बाण से तुरंत मोहन नाम का बाण छोड़ता है। पुष्प बाण मोहन रूप का तीर छोड़ता है, इस बाण से पुरुष स्त्री के रूप आकर्षित हो जाता है। इस प्रथम भ्रामक स्थिति के पश्चात कामदेव चार दूसरा बाण छोड़ता है, चार बाण है, चार तीर छोड़ता है, एक एक तीर का नाम है, एक नाम है स्तंभन, दूसरा है उन्मादन, तीसरा है शोषण, चौथा है तापन, ये चार बाण छोड़ता है कामदेव ने। तब स्तंभन का अर्थ क्या होता है, स्तंभन कैसे समझोगे, जो व्यक्ति का निर्बोध करा देता है, जो व्यक्ति को निर्बोध मतलब बोधशून्य, कुछ नहीं समझ पाएगा लास्ट टाइम में वहां पे, वो अंधा हो जाएगा, उसका बुद्धिहीन हो जाएगा स्तंभन होने से, स्तंभन का बाण जब प्रवेश करता है। दूसरा उन्मादन, जो उसे मदोन्नत व्यक्ति के समान व्यवहार करना पर बाध्य करता है, मदमत हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। तीसरा होता है शोषण, धीरे धीरे आसक्ति बढ़ता है, धीरे धीरे आसक्ति बढ़ता है, पहले तो बुद्धि शून्य हो जाएगा, इसका बाद मदमत हो जाएगा, कहाँ पे मिलूं, कैसा मिलूं, उसका आवाज इतना सुंदर सुनाई दे रहा था, जैसा क्या बोलते हैं एक ही चिड़िया होता है ना, आवाज देता है सुबह सुबह, क्या बोलते हैं उड़िया भाषा में, कोयली बोलते हैं, कोयल, हाँ कोयल का आवाज कितना मधुर होता है, और उसी पर जो कोयल का आवाज मेरा को सुनाई दे रहा था, फोन से भी, व्हाट्सएप से भी है, फेसबुक से भी, हाँ अंधा हो जाएगा। और अंधा होने का बाद क्या होगा, फिर शोषण, और उसका शोषण करना चालू होगा। स्त्री क्या करेगी, कभी भी फोन करेगी, कभी मिलेगी, तब ये करना चाहिए, वहां घूमने के लिए जाना चाहिए, शोषण, और पति का संपूर्ण जेब को काट कर सारा कुछ ले लेगा और कुछ नहीं बचेगी। ये होता है शोषण, जो अत्यधिक आकर्षण उत्पन्न करने वाला है, शोषण करें। और लास्ट में चौथा वाला है तापन, जो उसके हृदय की गहराई में जाकर उसको उद्विग्न करेगा, और उसका हृदय में वो सहन नहीं कर पाए, वो तड़प रहेगा। कभी कभी आप लोग का अंदर इधर एक्सपीरियंस है कि नहीं, फिर भी ज्यादा से ज्यादा लोग का एक्सपीरियंस होता है, कभी कभी युवक अवस्था में व्यक्ति लव करना चालू करता है, 15 साल से एक ही स्कूल में पढ़ाई, जब एक ही कॉलेज में जब पढ़ाई होता है, तब 15 साल से ये चालू होता है। तब जब पढ़ाई करते थे एक साथ में भोजन करते थे, तब आसक्ति बढ़ता है उसी टाइम पे, बाई चांस, और दोनों का पिता माता एग्री नहीं हुआ कि दोनों का दोनों कोई इधर उधर का बात में थोड़ा से रिश्ता टूट गया, तब कितना दोनों को दोनों सो नहीं पाएंगे। बहुत सारी भक्त अभी भी मेरे पास से दिल्ली का एक स्टूडेंट आया, उन्होंने क्लियर बताया, बोला प्रभु नींद नहीं हो रहा है, तब वो संपूर्ण वो सोचता है भगवान को हृदय में धारण नहीं करके, भगवान का नाम को हृदय में धारण नहीं करके, भागवत को हृदय में धारण नहीं करके, भक्त का संघ को हृदय में धारण नहीं करके, एक लड़की को जब हृदय में धारण करता है तब क्या स्थिति होगा, ये होता है तापन। इसलिए 4 पुष्प बाण मोहन रूप बाण को छोड़ता है। इसलिए भक्त प्रहलाद बहुत सारे शिक्षा देते हैं, लेकिन मैं पहले एकादश स्कंद के भागवत से एक श्लोक कोट कर रहा हूं। कितने बड़े कितने भी तपस्या हो जाएं, एक बार स्त्री का प्रति आसक्त होने का माते संपूर्ण कितने पढ़ाई, कितने तपस्या, कितने त्यागपन, सब एक क्षण पे नष्ट हो जाता है। किम विदया किम तपस्या किम त्यागे न श्रुते न वा किम विविक्ते न मौने न स्त्रीवीर्यस्य मनाहूर्तम्। ऊंची शिक्षा या तपस्या तथा त्याग किस काम का, इसी तरह धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करने, एकांत तथा मौन होकर रहने, और फिर स्त्री द्वारा किसी का मन चुराए जाने से क्या लाभ है। उपयुक्त सारा विधियां व्यर्थ है यदि किसी मनुष्य का हृदय तथा मन क्षुद्र स्त्री द्वारा चुरा लिया जाता है। जो व्यक्ति स्त्री का संगति के लिए लालायित रहता है, वह निश्चय ही अपने आध्यात्मिक प्रगति को रोक देते हैं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहते हैं, यदि कोई वृंदावन की मुक्त गोपियां की पूजा करता है, जिन्होंने श्री कृष्ण को अपने जारा रूप में स्वीकार किया था, वह मन के कार्यकलाप को काम से दूषित होने से बचा देती है। फिर कहते हैं, स्त्रीणाम स्त्री संगीनाम संग त्यक्त्वा दुरतात्मवान क्षमे विविक्त आशीनश्चिंत जैन मामांतंद्रित। नित्य आत्मा के प्रति सचेष्ट रहते हुए मनुष्य को स्त्रियों की तथा स्त्रियों के घनिष्ठता से जुड़े रहने वाले व्यक्तियों की संगति त्याग देनी चाहिए। एकांत स्थान में निर्भय होकर आसन लगाकर उसे अपने मन को बड़े ही ध्यान से मुझ पर एकाग्र करना चाहिए। और कहते हैं छह चीज से दूर रहना चाहिए। छह चीज को कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए कभी जिंदगी में। क्या क्या है? नदीनांच नखिनांच श्रृंगिनाम शस्त्रधारिणाम विश्वास नैव कर्तव्य स्त्रीषु राज कुलेषु च। नदी का ऊपर खरस्रोता नदी का ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। खरस्रोता समझ रहे हैं? स्पीड, जैसा हिमालय से पानी आ रहा है नीचे की तरफ वो स्पीड। नखिनाम च नख रखने वाले नाखून मतलब पशु ज्यादा से ज्यादा नाक रखते हैं। नाक अभी भी माताओं लोग भी नाक रखते हैं आप देखिए बहुत सारा बुरा नहीं मानना है। वो नाक रखना मतलब नेक्स्ट लाइफ में शेर बनना है। मूछ रखना मतलब नेक्स्ट लाइफ में शेर बनना है। नाक और मूछ रखने वाले को शेर का जन्म दिया जाती है। नाक इसलिए नहीं रखा जाता है माता लोग अपना नख को इतना डिजाइन इतना सब करने का नख रखने वाले का। और सुंगी नाम सिंह धारण करने का जीव को पर विश्वास नहीं करना। शस्त्रधारी अस्त्र शस्त्र धारण करने वा पर विश्वास नहीं करना। और राजा का ऊपर राजा कुलेशु और स्त्रीशु और स्त्री का ऊपर तो विश्वास ऐसा ही नहीं करना है। कहते हैं एक इंद्रिय एक चीज में फंस जाता है एक जीव एक इंद्रिय का ऊपर आसक्ति होकर फंस जाता है। हो सकता है मेरा कहने में अंतर होगा लेकिन आप समझ जाएंगे। जिस प्रकार शब्द रूप रस गंध स्पर्श कौन किस में फंसता है? स्पर्श स्पर्श में कौन फंसता है? हाथी। एक ही हाथीनी को पकड़ने के लिए एक ही खुदाई होता है गड्ढा। गड्ढा का अंदर एक ही हाथीनी रखा जाता है और तब एक ही हाथी को पकड़ा जाता है। वो हाथी को स्पर्श करना चाहती है स्पर्श से वो मरा अपना जिंदगी गया हाथी हो गया स्पर्श से। और रस से मछली मछली को आप देखा होगा पकड़ने के लिए एक ही कांटा होता है इसको बोलते हैं बंसी। एक ही कांटा ऐसा होता है और वो कांटा में क्या लगता है मछली के खाने का चीज। तब वो मछली सोचता है ये मेरा अच्छा आहार है और वो आहार को खाते हुए कांटा में फंस जाता है रस का स्वादन करने के लिए वो फंसता है। और कौन है? रूप रूप देखने के लिए पतंग आग में जलकर भस्म हो जाता है। वो आग सोचता है वो अच्छा है उसको देखते हुए अंदर फंस गया बस फंसा। और कौन है? शब्द शब्द सुनने में हरिन बांसुरी का आवाज और ये आवाज सुनते हुए फिर व्याधा क्या करता है जाल बिछा के रखता है तब हरिन फंस जाता है। और क्या रहा? गंध में कौन फंसता है? कुरंग कुरंग बोलते हैं मतलब मधुमक्खी जो भारा वो फंसता है। लेकिन एक जीव एक चीज में फंसता है लेकिन माताओं के पास स्त्री के पास ये पांचों को पांच ही है। कोई रूप में फंसता है कोई उसका सौंदर्य में फंसता है कोई उसका आवाज से फंसता है कोई उसका वचन से फंसता है, इसलिए पांचों को पांच है स्त्री का पास। इसलिए प्रहलाद महाराज यहां पे कहते हैं, सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भर मुदो हतो विमुड़ान। क्षणिक सुख के लिए विषय से सड़ते रहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं थोड़ी से सुख के लिए। भक्ति विकास स्वामी महाराज कहते थे एक ही क्षणिक सुख के लिए, एक ही क्षणिक सुख के लिए सजा जिंदगी बर्बाद करता है व्यक्ति, सारा जिंदगी बर्बाद करता है और विषय में लोग सड़ रहा है। प्रभुपाद बहुत सारा जगह में कहते हैं यदि ये धरती में संसार चल रहा है सिर्फ मैथुन के लिए, मैथुन के लिए और कुछ काम नहीं, और इंद्रियों भोग के लिए ही दिन रात श्रम करता है गधा जैसा। गधा तो अच्छा है, कम से कम थोड़ा मेहनत करके रात को सो जाता है, लेकिन संसार में गधा भी इतना मेहनत नहीं करता है जितने संसार का लोक मेहनत कर रहा है। यहाँ पे कि छोटा सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट है किस प्रकार मनुष्य को गधा का स्वरूप दिया गया, किस प्रकार गधा बनता है, कभी कभी बंदर बनता है, कभी कभी कुत्ता बनता है, बुरा नहीं मानना था। बहुत अच्छा ये आप लोग कभी भी बाहर जाके इसका एग्जाम्पल लोग को समझा सकते हैं, प्रचार में ये बहुत बात आता है। कहते हैं ये आया था, कोई मैसेज भेजा था तो मैसेज में आया था, एक बार भगवान ने पहले गधा को सृष्टि किया था। गधा को सृष्टि करने का टाइम पे गधा को उम्र दिए 60 साल, और खाने के लिए बोले घास खा के 60 साल बिताना है। गधा हाथ जोड़ के बोला प्रभु थोड़ा कम उम्र कर दो, इतने साल कौन घास खाकर जिंदा रहेगा। तब भगवान थोड़ा उम्र कम कर दिए, कितना साल गधा मांगा, कितना साल, 30 साल रहने के लिए, कितना साल, 30 साल, और 30 साल माइनस कर दिए 30 साल, तथास्तु कहकर भगवान निकल गए। निकलने के बाद फिर भगवान किसको जन्म दिया, कुत्ते को जन्म दिया। कुत्ते का जन्म देने के नाते बोले घर को चौकीदार करना है, आपका ड्यूटी है चौकीदार करना है, घर का लोग खाने का बाद खाना है, और कितना साल जिंदा रहना है, 30 साल। भगवान ने बोले 30 साल, कुत्ता वाला ये घर का झोड़ा झूठा मूठा खा के 30 साल बिताना है, थोड़ा कम कर दो उम्र। कितना साल, बोला 15 साल, बोले 15 साल फिर माइनस कर दिए भगवान, तथास्तु करके भगवान भी निकल गए। निकल के फिर भगवान ने बंदर को सृष्टि किया, बंदर को सृष्टि करने के नाते बंदर को बोले तब इसी डाहिया से दूसरा डाहिया, दूसरा पेड़ से तीसरा पेड़ को जंप करते रहना, वहीं से जो फल मिलेगा उसको खा पी के जीवन बिताना, और आपका उम्र है 20 साल। 20 साल, बंदर बोला 20 साल ज़्यादा हो जाता है, 10 साल कर दो। भगवान बोले ठीक है 10 साल, तथास्तु। तथास्तु कह चले गए। फिर आदमी को सृष्टि किया भगवान, किसको सृष्टि किया, आदमी को। आदमी को सृष्टि करने के बाद भगवान सोचने लगे, कहे देखो जिसको भी जितना उम्र दिया सभी लोग तो कम करते जा रहा है, मैं ये व्यक्ति का जो आदमी का उम्र थोड़ा कम कर देता हूँ। तो भगवान ने उम्र दिया 20 साल, आदमी का उम्र कितना दिया 20 साल। तो 20 साल देने का नाते आदमी कहने लगा, बोला बहुत कम उम्र दिया, बहुत कम उम्र हो गया। तब हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, बोला कम उम्र हो गया और ज़्यादा उम्र दे दो। भगवान बोले तथास्तु कह के बोले जो उम्र घट गया ना गधा से, कुत्ता से, बंदर से, वो उम्र आपको मिलेगा। कैसा मिल रहा है, बोला 20 साल भगवान दिए थे वरदान, तब 20 साल उसका बचपन का लालन पालन में चला जाता है। कितना साल, 20 साल तो ऐसा ही चला जाता है। 20 साल का बाद व्यक्ति गधा बनता है, क्यों, गधा से लाया है 30 साल। क्या गधा बनता है, शादी करने के बाद मेहनत, गधा तो इतना मेहनत भी नहीं करेगा, क्यों, गधा से उम्र लिया है। घर परिवार बिताने के लिए गधा बन के रहना पड़ता है, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ क्षमा कर देने का, जो सत्य है सत्य भी हो रहा है। दूसरा, फिर गधा होने के बाद व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा होकर क्या करता है, बोलिए, कुत्ता से उम्र लिया था, घर पे जो भी खाना बन रहा है, खाना पीना खा के जो दे दिए उसको खा के रहना पड़ता है, क्या करें। कुत्ता से उम्र लिया हो गया। फिर तीसरा कौन बना, कौन बना है, बंदर। मैं घर का अंदर बंदर बन गया। बंदर बनने के बाद भगवान ने बोले थे आप इसी डहिया से दूसरा डहिया, दूसरा डहिया से तीसरा डहिया, दूसरा पेड़ के पास। वो टाइम पे क्या होता है, कभी इसी बेटा के पास, कभी वो बेटा के पास, कभी ये दामाता के पास, कभी वो बेटी के पास, उसी पेड़ का ऊपर, ये पेड़ से वो पेड़ से ये पेड़, सही हो रहा है ना। अब मनुष्य क्या बन रहा है, भगवान प्रहलाद महाराज से सारा जगत को शिक्षा दे रहा है, यही बता रहा है उन्हें ईश्वर के से किसी प्रकार की लगाव नहीं रहता है, क्योंकि इसी प्रकार बन जाने के बाद और भगवान का प्रति लगाव नहीं रहता है। मैं उन्हीं के लिए सोचमग्न हूँ। प्रहलाद महाराज रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, मैं इसी के लिए सारा जगत के लिए मैं रो रहा हूँ, माया के चंगुल से मुक्त करने के विभिन्न युक्तियां सोच रहा हूँ। इसलिए कहते हैं शास्त्र में इंद्रिय तुष्टि के लिए कर्म करने वाले कर्मियों प्रमत होते हैं, विमुख होते हैं, भगवान से दूर रहते हैं, और जो अप्रमत है वो धीर रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का शरण पे जाते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कोई भी त्रुटि रहा आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।